ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने शुरू की आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव की तैयारी। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय आज की गई साझा। प्रतिनिधि सभा बैठक से योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित और भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई 28 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को पारित किया है। बैठक में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति का प्रतिवेदन सहित विधेयक पेश किया था, जिसे आज की बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसी तरह बैठक ने मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 में राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की बैठक ने तथ्यांक विधेयक 2076 के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। इसी तरह बैठक में सभा मुखाग्नि प्रसाद साहब कोटा ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाने का सभी से आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 13 गते शुक्रवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार ने सभी के लिए दीर्घकालीन पेयजल और साफ सफाई परियोजना के लिए यूरोपियन यूनियन से प्राप्त होने वाले करीब 1,37,00,00,000 रुपये अनुदान स्वीकार करने का निर्णय किया है। इसी तरह सरकार ने गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा और तालीम परियोजना के पहले चरण का क्रियान्वयन करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार से प्राप्त होने वाले करीब 95,00,00,000 रुपये अनुदान स्वीकार करने का निर्णय किया है। श्रावण 9 गते हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने इस बात की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक ने चलचित्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अभिनेता भुवन केसी का नाम मनोनयन करने के साथ ही शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केन्द्र के सदस्य में डॉ प्रकाश राज रेग्मी और डॉ नवीन चन्द्र गौतम का नाम मनोनीत करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने कई अन्य निर्णय भी किए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन की आंतरिक तैयारी शुरू हुई है। निर्वाचन आयोग में आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि बीते वैशाख में संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन पिछले चुनाव की तुलना में सबसे मितव्ययी निर्वाचन साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी निर्वाचन को भी मितव्ययी तरीके से संपन्न करने के हिसाब से आयोग ने आंतरिक तैयारियां शुरू की है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14#डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बजट निर्माण में अनधिकृत व्यक्ति शामिल कराने के विषय में छानबीन करने के लिए गठित संसदीय विशेष समिति पुलिस से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज सहित के विवरण के संबंध में फॉरेंसिक विज्ञों से परामर्श करेगी। संसदीय विशेष समिति की आज हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने पुलिस द्वारा भेजे गए सीसीटीवी फुटेज को देखा था। बता दें कि आर्थिक वर्ष 2079-80 का बजट संसद में प्रस्तुत करने से एक दिन पहले यानी कि जेठ 14 गते की रात अनधिकृत व्यक्ति को मंत्रालय में बुलाकर कर की दर को फिर बदल करने का आरोप तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के ऊपर लगाई गई है। मंत्रालय ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद संसदीय समिति ने रिकवर के लिए नेपाल पुलिस का सहयोग लिया। गृह मन्त्रालय ने कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज 3 महीनों तक अनिवार्य सुरक्षित रखने का मंत्रालय आयोग सचिवालय प्रतिष्ठान बोर्ड और कार्यालय को निर्देश किया है। आज गृह सचिव स्तर का निर्णय कर सभी कार्यालयों को 3 महीनों तक अनिवार्य सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश किया। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर ने कहा कि वैदेशिक रोजगार को सीप और प्रविधि से जोड़कर व्यवस्थित बनाने की जरूरत है। समाजवादी प्रेस संगठन अछाम द्वारा जिला मुख्यालय मंगलसेन में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कुंवर ने कहा कि इसके लिए नीतिगत और कार्यगत रूप से काम हो रहा है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश में विभिन्न देशों के लिए नेपाली राजदूत नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भंडारी ने डॉ शर्मिला पराजुली ढकाल को स्पेन के लिए, मिलन राज तुलाधर को रसिया के लिए, प्राध्यापक डॉ राम स्वार्थ राय को डेनमार्क के लिए, डॉ शंकर प्रसाद शर्मा को भूटान के लिए नेपाली राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। आज देशभर में कोरोना के 638 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 238 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं आज 2 संक्रमितों की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 3714 है। जापान सरकार ने नेपाल को मानवीय संसाधन विकास परियोजना क्रियान्वयन के लिए 35 करोड़ रुपए अनुदान मुहैया कराया है। आज अर्थ मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय की ओर से अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी और जापान सरकार की ओर से कार्यवाहक राजदूत तामुरा ताकाहारी ने समझदारी पत्र पर हस्ताक्षर किये। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के गुजरात के बोटाड जिले में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। इन लोगों का इलाज भावनगर, बोटाड और अहमदाबाद में चल रहा है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 1 शराब बनाने वाला और 1 शराब बेचने वाला शामिल है। गुजरात में शराब पर रोक है और इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। पार्टी इसे दिल्ली सरकार की शराब बेचने की नीतियों पर उठ रहे सवालों से भी जोड़ रही है। रूस और यूक्रेन जंग की आंच अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों के सख्त प्रतिबंध झेल रहे रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS छोड़ने का मन बना लिया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक रूस खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने का प्लान कर रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने शुरू की आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव की तैयारी। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय का आज की गई साझा। प्रतिनिधि सभा बैठक से योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित और भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई 28 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शिवरात्रि।